તારીખ 17-10-1993 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 157
સિદ્ધાંત કઈ ગ્રંથ લખાય છે અનુભવ પ્રકાશ છે આત્મ અવલોકન કરે કરી સ્વાનુભવ કૈસા હોતા હૈ કિસ પ્રકાર સે હોતા હૈ ઓકા ફલ ક્યા હૈ મહિમા ક્યા હૈ દર્શાવને કે લીએ બરા ઉત્તમ ગ્રંથ હૈ ખાસ કરકે જો કહે કે શૈલી હૈ પદ્ધતિ હૈ પદ્ધતિ એસી હૈ કે બહુ શાસ્ત્ર નહીં પડા હો બહુ કમ સૂક્ષ્મ હો જાણકારી કમ હો કિંતુ જો કુછ થોડી ભી પ્રયોજનભૂત સમજ કો અપને પરિણામ મે જિસકા અમલ કરને કા આચરણ કરને કા જિસકો ભાવ હોતા હૈ ઉનકે લિયે બહુ આસાન હોતા હૈ અનુભવ પ્રકાર
ઓછા બંધ કર દો આરામ સે ખોલ લે આવાજ પકડતા
આમ સમાજ એક એસી ધારણા હૈ કે સ્વાનુભવ આત્માનુભવ નિર્વિકલ્પ અનુભવ સંયમ દર્શન બહુ ઊંચી ઊંચી વાત હૈ એ હમરે લોકો કે કામ મેં કામ કી નહીં હૈ ક્યુંકિ હમ લોગ ગ્રસ્તી હૈ ઇતના હિ નહી હમરે પાપ કે પરિણામ બહુ હોતે જાનતે ક્યા ક્યા કરતા માલુમ નહીં
ક્યા જ્ઞાન કા
કામ તો શુરુ સે ઇન્ફિરિયોરિટી ઓફ કોમ્પ્લેક્સ જિસકો બોલા જાતા હૈ પહેલે સે એસી ધારણા કર લેતે હૈ ये ऊंची ऊंची बातें हमारे काम की नहीं है तो ऐसा नहीं है यह ग्रंथ पढ़ने से मालूम पड़ सकता है कि कोई भी गृहस्थी जीव स्वानुभव आत्मानुभव करके और बहुत आसानी से आत्मानुभव करके अपने परिभ्रमण का छेद कर सकता है अभाव कर सकता है इस ग्रंथ की कोई खूबी है विशेष खूबी है तो ये हमको मुमुक्षुता के प्रारंभ में ये ग्रंथ मिला है कुछ जैन शास्त्र नहीं इतने पढ़े थे एक कृपाल देव के वचनामृत पढ़े थे और उसी माध्यम उसी बीच में ही ये ग्रंथ लिया कोई दिगंबर शास्त्र श्वेतांबर शास्त्र कोई शास्त्र नहीं पड़े अनुभव की बात इसमें जो है तो इसलिए हमने ये बात बताई कि शास्त्र ज्ञान भले ही कम हो शास्त्र विषयों की जानकारी भले ही कम हो क्योंकि जिसको आत्मज्ञान होने का उत्साह है मन है विडियोन्नास है उनके लिए कि अनुभव के लिए क्या क्या प्रयोग करना, कैसा प्रयोग करना, अनुभव के विषय में थोड़ी भी समझ आए उसका अमलीकरण कैसे करना, इस ग्रंथ में बहुत सरल पद्धति से इस विषय को प्रतिपादन किया है। इस ग्रंथ की विशिष्टता है, ज्यादा शास्त्र पढ़कर के भी आखिर में तो अनुभव तक ही पहुंचना है, और ज्यादा शास्त्र पढ़ना उन्हीं इसी के लिए जरूरी है कि जो ज्यादा फंसे हैं, फंसे हैं मतलब कि अपने श्रद्धा ज्ञान में उल्टी विपरीत धारणाएं ज्यादा बनाई है, उनके लिए स्पष्टीकरण ज्यादा चाहिए। उनको तो निकलने के लिए जितना बुद्धिपूर्वक विप्रयास होगा उतना ही बुद्धिपूर्वक समाधान लेकर के निकालना पड़ेगा। इसके पहले उनके अनुभव के विषय में अपनी मति है तो सरलता से काम नहीं कर पाएगी।
होता है तो मुमुक्ष वैसे ही है, होता है मुमुक्ष तो वैसे ही है, बहुत भोजन चढ़ा हुआ है उनके, बहुत दवा सी पड़ी।
हाँ तो है ही, इसलिए इतनी तो सुविधा है कि सारा मेडिकल स्टोर हमारे पास है, बहुत से शास्त्र है उपलब्ध है। एक जमाना ऐसा था कि गांव में एक शास्त्र होंगे, जितने भी हो पढ़ने वाले रस वाले हो, एक पढ़ने पीछे दूसरा, पढ़ने पीछे तीसरा, पढ़ने फिर दूसरे गाँव भेज दे उसको। अभी तो घर घर में अलमारियां भरी हुई है, क्या हो रहा
है
तो हमारे मुमुक्षुओं के प्रत्येक घर में पूरी की पूरी अलमारियां शास्त्रों की भरी हुई है।
दीमक भी लग रही
है,
उदय लागे अलमारी भरेली से उदय लागे है,
दीमक लग रही है। तो इसका मतलब कि लोग शास्त्र तो खरीद करने के पढ़ते नहीं है, कहने का क्या अभिप्राय है, तो शास्त्र तो पढ़ लेते हैं और जैसा शोकेस रहते हैं वैसे शोकेस का उसको स्थान दे देते हैं, तो भी अपना घर में शास्त्र है अच्छा दिखता है घर में, जैसे कोई धर्मात्मा है धर्मी है ऐसा कहते हैं, दिखे धर्मात्मा जैसा।
मैं अपने घर की बात बताऊं, गंगालाल जी कारण यहाँ मंदिर करवाया है, आपके उद्घाटन किया, उद्घाटन में हम लोग गए थे, हमने एक एक जिनवाणी जहाँ ठहरे उसी के हमने जिनवाणी कर रही किताब हमारे देश में भेजी चिट्ठी के हिसाब से, मैं चित्र उनको धन्यवाद के लिए दी, तो किताब ना पढ़ी है मैंने, मैं देखा किया तो इसलिए मैंने ये बात की है। उसका क्या उपयोग है कहाँ लिखने की है क्या जरूरत है, उसकी चिट्ठी तो मुझे लंबी लिख दी, धन्यवाद दे दिया, मुझे भी भेज दी, हो गया यहाँ तक पहुँचे। हमारे तो बहुत कड़ी दवा चाहिए,
बहुत कड़ी दवा चाहिए,
अंतर मारने वाला सही, अंतर मारने वाला सही, बातों से है मारने वाले नहीं।
पुराने मुमुक्षुओं को तो अंतर मारना चाहिए, नए नए वालों को तो
पुराने पुराने नया भी नया पुराना हम पहले सुधर सकते हैं, नया पुराने से पहले
सुधर सकता है, सुधर सकता है, नए पुराने से ज्यादा सुधर सकता है, ये अनुभव है अपना आपका। पुराना नहीं सुधरेगा, पुराने हैं, नए नए नहीं, हम तो पुराने हैं, तो उनको तो ऐसा आम रहता है, नया आता है वो काम कर लेता है, ऐसी बात है, नया आता है इस क्षेत्र में रुचि से आता है तो काम कर लेता है, रुचि चाहिए आत्मकल्याण की रुचि। चाहिए। सही बात यह है कि धर्म कोई दूसरों को दिखाने के लिए करने की चीज नहीं है।
तो फिर करें क्यों? फिर करें क्यों?
बाह्य क्रिया में क्या होता है कि कौन उपस्थित है, कौन नहीं अनुपस्थित है, कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं, लोग गिनती गिनने लग जाते हैं। और हम भी गिनती में आ जाए ऐसी कोई हमारी मनोवृत्ति बन जाती है,
बनी हुई है,
बनी हुई है। तो ये लोक संज्ञा से तीन काल में धर्म होने वाला भी है। क्यों? कि लोगों में अपनी धार्मिक परिस्थिति का कोई स्थान बनाए रखना या तो है उसको टिकाए रखना, ऐसी मनोवृत्ति जो लोक संज्ञा है वो काल कूट विष है। ऊपर मैंने क्या कहा इसको? काल कूट जहर है। और धर्म है वो अमृत है। धर्म है वो क्या है? वो अमृत है, अजर अमृत को देने वाला है। तो अमृत और जहर का मेल नहीं खाएगा, इसलिए जिसको धर्म करना है उसको लोगों की नजर को भूल जाना है। समाज पूरी समाज को गौण कर देना थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन समाज को मुख्य करने वाला कभी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? धर्मी तो कोई होता है पर समाज बड़ी होती है। और आजकल जमाना डेमोक्रेसी का हो गया है। क्या ज्यादा लोग क्या कहते हैं इसमें हम लोग मर जाते हैं, सब जाते हैं और मर जाते हैं।
समाज की तरफ देखते तो गुरुदेव का परिवर्तन
होता ही। गुरुदेव तो एक हमारे लिए जीवन की इतिहास है। जिस संप्रदाय में वो थे, स्थानिक वासी संप्रदाय में थे,
बहुत बड़ी समाज,
बहुत बड़ी समाज और बड़ा पूज्यपद था उनका, क्योंकि क्रिया बहुत चुस्त करते थे और जितना समझते थे उसका इसका अमल करते थे चुस्त रूप से। तो हार लेने को जाए और कोई बाई का कपड़ा अगर छू गया आम छोड़ के निकल जाएगा आपकी समाज से। किसी का घर आहार लेने को जाए और बच्चा रोने लगा हो वापस चले आप वहां से आहार नहीं ले रहे। शास्त्र में जो जो बात लिखी है उनके शास्त्र में लिखी वो भी चुस्त रूप से आराम करते हैं। और बहुत चुस्त करते थे, इसलिए ऐसे लोगों ऐसे साधु भी कम होते हैं संप्रदाय में चुस्त रूप से क्रिया का प्रतिपालन करें, तो उसकी महिमा बहुत बढ़ती है। गुरुदेव की अपने संप्रदाय में बहुत महिमा थी। उन्होंने पता चला कि धर्म कोई अलग चीज है, ये कोई धर्म नहीं है। साधु का पता ले लेना कोई धर्म नहीं है, या कोई बाह्य क्रिया कर लेना वो कोई धर्म नहीं है। पंच महाव्रत का पालन करना कोई धर्म नहीं है, पूजा भक्ति करना कोई धर्म नहीं है। इन बात से उनकी समझ में आई, समय साथ पढ़ के उनकी समझ में आई। उन्होंने फिर पीतांबर शास्त्र का अध्ययन तो इसके पहले 45 साल पर कर चुके थे, दिगंबर शास्त्रों का अध्ययन कर चुके, सभी साल हाथ में आ बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया। तो जो लोक संज्ञा थी उसको छोड़ दी। क्या किया उन्होंने? लोगों ने बहुत बहुत विनती किया, हाथ जोड़ जोड़ करके, महाराज अपने संप्रदाय में रहकर के आप जो भी कुछ करना हो, कुछ बोलना हो आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आपके सामने कोई विरोध करने वाले नहीं है, आपका प्रतिभा प्रभाव बहुत है संप्रदाय में। कोई तो रिहा कहलाता था उस जमाने में, वो नाथपति संप्रदाय का कोई कहलाते थे, क्योंकि इसकी बराबरी में कोई नहीं है संप्रदाय में। सही बात, सच्ची बात, जाहिर करने में कोई प्रलोभन से वो आए नहीं, समाज के प्रलोभन में वो आए। पर संप्रदाय का चाहते तो विरोध बड़ा हुआ, तो विरोध के सामने भी वो झुके
नहीं।
और सत्य बात कहते रहे, सिर्फ स्थानकवासी ने विरोध किया उतना ही नहीं, सभी ने विरोध किया, लेकिन वो संप्रदाय ने भी उतना ही विरोध किया। लेकिन वो विरोध सत्य बात जो है वो सच्ची रही कहते रहे हैं, और बहुत से लोग इस सत्य बात को समझने के लिए उनके समीप आते रहे हैं। और वो प्रकाश ग्रंथ भी से बहुत पहले दिन छपा हुआ है, मूल ग्रंथ ब्रह्मारी में है, उसकी भाषा थी 250 वर्ष पहले जयपुर के पास हम लेते थे, और उसके बाद हिंदी हुआ, उसके बाद इसका गुजराती भी हुआ है, उसको पढ़ना गुजराती भाइयों को बहुत अच्छा लगा है, हिंदी तो है ही अपने सामने
गुरुदेव साहब ने अप्रोच नहीं पहुंचे।
और इस छोटे से ग्रंथ को छोड़ दिए थे प्रवचन भी हम लोग काटते हुए हैं, कोई गुजराती में से हिंदी करने वाले हों तो उसका अनुरोध देहरादून से अपने कैलाश चंद जी पंडित जी आए, ये बार बार करते हैं, चिट्ठियाँ भी लिखते हैं इंटरमंडल वालों पर, बालचंद जी पे भी आई, रविंद्री पे भी आई, हम लोगों के मंदिरों पर भी आई है, मैंने अनुभव का अनुभव के लिए बहुत सुंदर ग्रंथ है। और प्रैक्टिकल साइड को खोलने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसका स्वाध्याय कर लेना है। क्या कहते हैं दूसरे पांच जो अपना जो धन्यवाद कल का अध्याय था उससे आगे चलता, निरंतर अपने स्वरूप की भावना में मन रहे, स्वरूप प्राप्ति की भावना और स्वरूप आश्रय की ये भावना है, ये भावना जिसको निरंतर चलती है, जिसको निरंतर चलती है, निरंतर किसको चलेगी,
रुचि होगी
जिसको जरूरत लगी हो,
तो ये तो आप कंट्रोल कर दिया है, लेकिन धारावाही ज्ञान धारा चालू है ही
जी हाँ,
तो आप उसी को सबके पास है वही अमृत है
जी,
इसके लिए कोई किसी के पास कम है तो कोई बात नहीं, जिससे कोई बात नहीं, धारावाही ज्ञान की धारा तो चालू है, उसी से हमको काम करना है
जी हाँ,
थोड़ा हो गए
दर्शन ज्ञान चेतना के प्रकाश को अपने उपयोग द्वार में दृढ़ता से भाए, वो जो धारा है उसको ग्रहण करने कैसे करें, भावना होगी तो होगा है तो समझो,
भावना भावना
लेकिन जिसको भावना नहीं है उनको है फिर भी नहीं है के बराबर है,
है
तो सही निगोल वाले जी को भी है,
निगोल की बात नहीं अपने सबके है, होते भी नहीं
अपने अपने सबको बात है, लेकिन भावना पुण्य की है, पुण्य के फल की है, तो भावना जड़ की भावना है, कैसी भावना है, ये जड़ की भावना है, पुण्य के पुण्य और पुण्य के फल की भावना आत्मभावना नहीं होगी, उसको आए बिना धर्म के क्षेत्र में जाएगा वो तो पाप परिणाम को छोड़ करके, पाप प्रवृत्ति को छोड़ करके कुछ धार्मिक क्षेत्र में आएगा वो पुण्य करेगा, और उसको आशा अभिलाषा रहेगी कि इसका फल मिले, आने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये नहीं धर्म नहीं है,
ज्वाला जी झुलसा है मेरा अंदर बोली है
तो जलता है
आमा आवी जिंदरों में आवी साची प्रतिपालन सांभळी शास्त्र स्वाध्याय करी ने पुण्य मने परंपराए मोक्षो काम थासे एवी पूर्ण थई गई, एवी मिठास आवी गई,
ऐसा भी बनता है। तत्व दृष्टि नहीं है तो ऐसा भी। तत्व दृष्टि में क्या है कि जो पुण्य तत्व है उस आश्रम तत्व है, पुण्याश्रम जिसको कहते हैं, आश्रम तत्व है, पुण्य तत्व है, तो आश्रम तत्व में ज्ञान होता है और आश्रम तत्व का फल क्या है, बंध है, जो मोक्ष से प्रतिकूल है, प्रतिपक्ष में है। इसलिए संवर है, संवर तत्व है, जो संवर तत्व से मोक्ष होता है वो पुण्य का अपुण्य भाव का अभाव स्वरूप है। तो तत्व दृष्टि है, तत्व विरुद्ध स्वाभाविक है, वरना क्या होता है, फलित तत्व दो है लेकिन कार्य कारण रूप में लेने में क्या आपत्ति है, ऐसा भी एक तर्क हो सकता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि तो पुण्य को कारण कहें पर संवर को कार्य कहें, लेकिन विरुद्ध स्वाभाविक जो कारण कारण कार्य को भी कारण कार्य का उपचार तब लागू पड़ता है अविरोध पड़ा हो तो वरना नहीं लागू
पड़ता।
विजातीय भाव मैंने आत्म स्वभाव से विरुद्ध है। आश्रम अधिकार में क्या कहते हैं कि आश्रम भाव दुखदायी है, मलिन है, इसमें क्या है, मलिनता है, मलिनता है, वो पवित्र धर्म का कारण नहीं होना। ये बात मुझे मुख्य रूप से इसलिए खुली कि अपने तीनों ही जैन संप्रदाय में, जो भी जैन के नाम से तीन बड़ा संप्रदाय का चलता है, ये तीनों ही संप्रदाय में ये मान्यता चलती है कि कुछ पुण्य योग से, पुण्य करने से आस्ते आस्ते परंपरा से धर्म की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रतिपक्ष है और तत्व दृष्टि से विरुद्ध तत्व है तो सम्यक दृष्टि तो तत्व दृष्टि होता है और तत्व दृष्टि होता है वह सम्यक दृष्टि होता है। तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्या बात आई कि एक तत्व में दूसरा तत्व का अध्यास होना उसी का नाम मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान है। क्या एक तत्व में दूसरा तत्व का आभासन होना इतना कहने से निश्चय काम होगा उसी कोई मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान कही है। बहुत स्पष्टीकरण दिया है
साते तत्व ज्ञान होने
को, तो एक तत्व का भूल होता है तो फिर साते तत्वों का भूल होता है। दूसरा के संसारी जीव को पुण्य और पुण्य फल की महत्ता हमेशा हमेशा रही बताइए। कौन ऐसा नहीं है कि जो धर्म के क्षेत्र में पुण्य और पुण्य फल की महत्ता नहीं देता है,
पुण्य करें क्यों, फले नहीं मिलता हो तो पुण्य क्यों करें,
तो उसकी महत्ता तो अनादि से। अब आत्मस्वरूप जो दिखाते हैं ऐसे जो आत्मज्ञानी पुरुष है, आत्मा के अनुभवी पुरुष है, जो आत्मस्वरूप दिखाते हैं वो ऐसा कहते हैं कि आत्मा जो जानने में आए, अनुभव में आए, तो उसकी महत्ता ऐसी है, इसकी महत्ता ऐसी है कि जिसके आगे पुण्य तो बड़ा विष्टा का ढेर है। क्या कहा द्रव्य से प्रकाश, क्या कहा, पुण्य तो विष्टा की उपमा दे दी है ज्ञानियों ने कि जो पुण्य का धनी होकर के उस पर बैठता है वो ना बैठा बैठा है, ऐसा बताया है। क्यों, कि विष्टा है पवित्र हम तो होती है, जैसे पुण्य के परिणाम है वो सकसाई परिणाम है उसमें, तो जो पवित्रता को जानता है, अनंत पवित्रता का पुण्य ऐसे आत्मा को जिसको महिमा है वो कभी अपवित्रता की महिमा नहीं करेगा। अगर जो कोई शास्त्र पढ़ करके भी अपवित्र ऐसे कसाई परिणामों, बड़े बड़े कसायों कसाई परिणामों की महिमा करता है तो जानना चाहिए कि उसने आत्मा को नहीं जाना है। क्यों? कि एक तो हीरा चैतन्य हीरा है और एक तो बिल्कुल पत्थर है, सामान्य पत्थर है। जिसके पास हीरा है वो तो पत्थरों का गोडाउन नहीं रहता, जिसके पास सोने का गोडाउन भरा हुआ है वो तो लोहे का गोडाउन नहीं होता। तो ये एक मूल्यांकन होने
इतना सा मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान तो है, उसको जगाइए।
हाँ, ये जगाने की बात भावना में आती है कि अगर भावना है तो निरंतर भावना है तो देख लेना अपने परिणाम को, जांच कर लेना कि क्या निरंतर भावना चलती है आत्मा की, स्वरूप की, आत्मस्वरूप की, या कुछ संयोग की चलती है। संयोग की भावना जिसे चलती है, अभी भी संयोग की भावना चलती है, तो ये दोनों प्रतिपक्ष में है, दो भावना साथ में चलेगी। जिसको स्वरूप की भावना चलेगी उसको संयोग की भावना छोड़ जाएगी, जिसको संयोग की भावना चलेगी उसको स्वरूप की भावना चल सकती है, ऐसी बात है।
भावना बदलनी,
भावना पहली बदलनी। भावना तो आपको क्या चाहिए उसको प्रदर्शित करती है। भावना क्या प्रदर्शित करते हैं? आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसकी भावना चलेगी। स्वरूप चाहिए तो स्वरूप की भावना चलेगी, और स्वरूप नहीं चाहिए तो और भावना में, तो पुण्य पाप की भावना में तो खड़े ही नहीं पड़े। और अकेला पुण्य किसी को रहने वाला नहीं है।
ज्ञान में हमारी जरूरत की चीज की भावना न होके, हमारी जरूरत की चीज की भावना न होके, और जिसकी जरूरत नहीं है फिर उसकी जरूरत लगती है, ऐसा बात क्यों है?
क्योंकि उसमें निश्चय है सुख का। हमें भावना जरूरी है, ऐसी चीज में हमने सुख का निश्चय कर लिया है।
ज्ञान तो ज्ञान इससे विपरीत क्यों हुआ?
अगर इससे विपरीत सुधारी नहीं, ऐसा हमारा गलत अभिप्राय, गलत निश्चय, गलत निर्धार, कभी छूटा नहीं, ऐसा पढ़कर के भी उस छोड़ने का प्रयास नहीं किया। बराबर से जब
नहीं,
लेकिन पढ़ा ही नहीं, पढ़ा और पढ़ा नहीं, क्यों? कि पढ़ा फिर भी इसके विभिन्न धर्मारा जो परिणाम है उसको छोड़ा नहीं, पार नहीं किया, इसलिए वास्तव में पढ़ा ही नहीं।
स्वरूप कोई, स्वरूप कोई समझा नहीं है तो फिर तो ये गलती होगी ना
जी।
स्वरूप को भी पहले समझना है, स्वरूप समझेगा तभी ये गलती अपने आप छूट जाएगी।
क्योंकि स्वरूप समझेगा कम के भावना आएगी स्वरूप प्राप्ति की, बुद्धि वाला है इसलिए कोई स्वरूप समझ जाएगा। कोई धन
बुद्धि की तो बात ही नहीं है, अनुभव की बात है
कि बुद्धि बहुत अपने में दिमाग वाले आदमी हो गए,
स्वरूप के आने से छूट
जाएगा। समझने के लिए हमारे पास थोड़ा ज्ञान तो है, उस ज्ञान को कहाँ लगाना?
स्वरूप पे
बस यही बताते हैं।
पर कहाँ कब लगाएंगे?
हमेशा
भावना होगी तो लगेगा, वरना ये दुनिया भर का चक्कर है, बहुत बड़ा चक्कर है।
वो तो सारे
इसलिए यहाँ भीमसेन जी कह रहे हैं जो ज्ञान की धारा जिसको 17-18 समय साल के गाथा में भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कही है, क्या कहा है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ऐसा बोला है। तो है हमारे पास, कहीं लेने जाने का नहीं, मंदिर में भी लेने जाने का नहीं है, भगवान को भगवान ही जाने अंतर्गत में है। वो भगवान जो है उसका दर्शन नहीं होता है, प्रकट है फिर भी इसका दर्शन नहीं होता है। यह प्रकट बोलेंगे प्रकाश को उपयोग विद्वार में दृढ़ता से है, प्रकाश रूप है, चैतन्य प्रकाश है, ये चैतन्य प्रकाश को भावना पूर्वक अपने में चाहिए तो भाएंगे, तो भाएंगे तो चिर परिणति से स्वरूप रस होता है।
तो क्या होता है परिणति बनेगी
भावना से बार बार इसका उपयोग होगा भोगन में सविकल्प दशा में भी उसी के परिणाम होंगे और फिर उसमें रस रस आने लगेगा। रस आने लगे से परिणति ये उत्पन्न हो जाएगी। परिणति से क्या विषय कल चला थोड़ा परिणति का विषय थोड़ा चला परिणति बड़ा दृष्टांत देते थे अच्छा दृष्टांत देते थे कि जैसे किसी के घर में 25 साल का एक युवता लड़का का निधन हो जाता है तो उसके माँ बाप को तो बहुत दुख लगता है। उसको पिता को जो दुख लगा है अपने हमारे यहाँ अकेले होते हैं जो मिष्ठान बनाते हैं सब सगे संबंधी आते हैं मिष्ठान खिलाते हैं पर उसको भी मिष्ठान खाने का होता है पिता को। अब उपयोग लगा है लड्डू खाने में मिष्ठान खाने में तो परिणति में क्या हालत है
दुख दुख
उसको ये मिष्ठान मिठाई मिठाई नहीं लगती है जहर जैसे लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन परिणति में उपयोग में तो बात करते करते थोड़ा हंस भी जाएगा थोड़ा स्मित भी कर लेगा कोई बहुत लंबे टाइम से आए हो संबंधी इसके साथ देखेंगे मिलेंगे आप बता रहे अच्छा हुआ आप बता रहे बहुत आपको मिलकर खुशी हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन जिसको मिलकर के खुशी हुआ है और जिसका वियोग हुआ है दोनों बात एक साथ में है कि नहीं इनके परिणाम में है कि नहीं है। ऊपरी ऊपरी से देखने वाले को ये लगेगा कि ये खुशी होता है हंसता है राजी है भी तो क्या राजी है क्या नहीं राजी बहुत दुख पड़ा है
उसको तो दुख दादा का उसको तो पुत्र का वियोग था किसी को अच्छा से संस्कार यहाँ तो जीरो है ही नहीं
यही
अपना जीरो
यही तो वही आपत्ति है। हमारे परमात्मा का वियोग हमको नहीं लगता है यही बड़ी आपत्ति है और जब लगेगा
तो
तभी परमात्मा का दर्शन होगा तभी कुछ नहीं सुहाएगा। मिष्ठान क्या पंचेंद्रिय क्या एक भी विषय रस नहीं आएगा। विषय अपने स्थान में है क्रिया अपने स्थान में है उपयोग भी जाएगा खाएगा भी लेकिन रस आएगा नहीं करने का है वियोग नहीं लगा है वियोग की वेदना विरह की वेदना वे बिना हमारे अनंत काल की विभाव परिणति है वो गलने वाली नहीं है ये रूढ़ हो गई है। आगे लिखा है हमने यहाँ से नहीं लिया था लेकिन आपके पढ़ने में इसमें लिखा है उत्तर लिखा है वहां से पढ़ो जो करना है उसमें लिखा है अनादि काल से यह जीव और विद्या में मैंने मिथ्या तुम्हें पढ़ा है कहते मोहों की निविड़ ग्रंथि पड़ी है मोहों की ग्रंथि मैंने गांठ पड़ गई है आत्मा और मोह गांठ पड़ गई है। तो आता है ना रेशम का सूत्र हीर कहते हैं जिसको हीर का सूत आता है उसकी गांठ पड़ जाए तीव्र जोर से और इसके पर फिर तेल का टिपा तेल तेल भी डाले फिर खुले फिर खुले एक तो रेशम इतना स्पर्श में वो है कि उसको पकड़ करके खोले तो जो उंगलियां हैं छूट जाती है पकड़ में नहीं आता और उसमें भी चिकना तेल आ गया उस पर और स्निग्ध हो गया। एक तो रेशम स्निग्ध है रुखा है तो जल्दी गांठ निकलती है लेकिन स्निग्ध है रेशम
और उस पर भी तेल डाल दिया।
तेल तो नहीं डाला अभी
नहीं डाला
इतनी जबरदस्त विराट तो नहीं है
तो आपने बोला कि अंतर मार रहा है
अंतर भी बर्दाश्त नहीं होता
बात ऐसी होगी अनादिकाल से
खुलने वाली है गांठ
खुलने वाली है अभी भीतर में से आवाज आती है अच्छी बात है ऐसा भीतर में से आवाज आनी चाहिए आत्मा की हमारी भोग गलती अब छुपेगी छुपेगी और छुपेगी अब हमको ऐसा श्री गुरु मिला है ऐसा सत्शास्त्र में तत्व मिला है तो हमारे गांठ छुपेगी छुपेगी और ऐसा भीतर में से प्रतिदिन को आवाज आनी चाहिए ये मोक्ष की भणकार है
जगाने वाला चाहिए
जगाने वाला गुरुदेव निकले जगाने वाले हम कितने जगते हैं वो हमारे पर आधार है लेकिन निकले जगाने वाले तो
जगने की भावना होनी चाहिए जगने की भावना
ये तो है और ऐसे गुरुदेव के पास आए तो भावना क्यों रखे क्यों नहीं रखेंगे गुरुदेव को प्रवृत्ति करते ऐसा कहते थे इतना परम तत्व शुद्ध तत्व उत्कृष्ट तत्व सर्वोत्कृष्ट तत्व है कि रुचि से भावना से कोई सुनने को आएगा तो उसको मोक्ष का भंडार भीतर में से पैदा हो जाएगा तुम्हें मोक्ष होना मेरा मोक्ष होने वाला नहीं तो सुन नहीं बोला मोक्ष का भंडार होता है क्योंकि उसने मुगलपुर में क्या किया है पूर्णता का लक्ष्य किया है इसलिए उसको मोक्ष का भंडार आएगा अधूरी दशा का नहीं लिया तो पंचम काल है तो मोक्ष का नाम नहीं लेना वो भी
नहीं लिया
जैसी बात
अल्प ज्ञान के समय में उसकी पूर्णता का लक्ष्य करना उसको अल्प ज्ञान के समय में ही पूर्णता का लक्ष्य करना मुझे इतनी सी है लेकिन
हमें उनको कहाँ जाना है हम प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो फिर कितनी कैसे होगी हमारे हमको कितना मंजिले का मकान बनाना है 24 बूस्था और 15 मंजिले का हमारा मकान है तो उसकी नींद भी उतनी चाहिए उसका इंजीनियरिंग होता है सिविल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं 1 मंजिले का मकान हो उसकी नींद और 15 मंजिले का मकान उसकी नींद में शरीर के रूप ये नींद की बात तो अपना टारगेट के अनुपात नहीं तो उसको भी अपने ज्ञान प्रकाश में मैंने दर्शन किया जिसे सुनाते उपयोग द्वार में उपयोग दरवाजा है उस उपयोग द्वार में चिंतन होता है कि मैं ऐसा ज्ञान स्वरूपी आत्मा की दृढ़ता आती है इसमें प्रत्यक्ष होने से और दृढ़ता आती है प्रकट होने से और दृढ़ता आती है तो स्वरूप रस आत्मरस चैतन्य रस और चित्त परिणति
जैसे काम के लिए
जी
उसको इतने से काम के लिए उसको बहुत साथ सामान की जरूरत नहीं है
नहीं
थोड़ा सा ज्ञान साथ ही हमारा
थोड़ा सा ज्ञान साथ देखो ये तो दूसरे तीसरे पन्ने में तो बात लिया है ग्रंथ के प्रारंभ में ये बात लिया है कि ये ज्ञान वाणी तुम्हारे पास है कथन मात्र ग्रहण नहीं करे अमल कर लेना क्या उनकी सूचना को रखी उन्होंने उसे कथन मात्र ग्रहण न करे क्या धारणा मात्र ग्रहण न करे लेकिन अपने ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य करने का प्रयास करें ज्ञान स्वभाव चैतन्य हीरा है आप कहेंगे कि मिलता नहीं है खो गया है लेकिन अच्छा है कि अंधेरे में नहीं खोया है प्रकाश में है ये भी एक सुविधा है
पूरी
सुविधा है वरना हम ये कह देते हैं कि क्या करें चैतन्य हीरा खो गया अंधेरा अंधेरा है अंधेरा में कहां से मिलेगा निरोध में अनंत काल गया हम लोगों का, हमारे जीवन का परिभ्रमण का सबसे ज्यादा अनंत काल कहाँ गया? पूरे विपरीत आकर के वहां गया। दो इंद्रिय होना कि अंधे को रत्न मिलना बराबर है, तो हम तो पंच इंद्रिय सच्चे देव गुरु शास्त्र सच्ची बात हमारे सामने दरकार नहीं करेंगे तो हमारा जितना हीन भागी और कौन
ध्यान पर वो काल भी आगे खड़ी हो जाती है।
जिसको काल लब्धि पर उपयोग जाता है विचार में, संयुक्त में अगर जाता है तो उसको नष्ट काल पर जाना चाहिए। कभी काल लब्धि का विकल्प संसार है, संजय व्यापार है। अगर हमारा त्रिकालीय स्वरूप पर लक्ष्य नहीं जाता तो काल लब्धि का आलम्बन आ जाता, उसका लक्ष्य हो जाता है, संतोष पकड़ेंगे कि हमको नहीं प्राप्त होगा क्योंकि हमारे कालज नहीं होगी, हमको जानकारी नहीं होगी, कालज जो भी नाकाम होने वाला नहीं है। लेकिन कभी किसी आचार्य ने अकेली कालज का बात नहीं किया, जिनके कालज का बात किया है उनको पुरुषार्थ समेत कालज प्रकट हुए ऐसा बताया है। हमारा पुरुषार्थ चलता है और हम कालब्धि की औस लेते हैं, बहुत लेते हैं, तो ये कालब्धि वाली हमारी समर बिल्कुल गलत है।
कालब्धि में नाम ले चेतो नहीं आत्मा,
चेतो नहीं आत्मा, आत्मा का पुरुषा चेतो नहीं है आत्मसिद्धि में। निविड़ ग्रंथि बनी है आत्मा और पर का एकत्र संधान हो रहा है। जिस प्रकार किसी पुरुष को अफीम का नशा चढ़ जाता है वह तो दुख प्राप्त करता है परंतु नहीं छूटता है, ये अलग है मालिक क्या जानता है यहां पर अफीम तो गैर है, नहीं खाना चाहिए लेकिन तलब लगती है तो रह सकता तलब लगती है क्या? ये मेडिकल साइंस में जो पॉइजनस पोजिशन होती है उसको खास तकलीफ कहते हैं कि जिसको बहुत जहरीला असर हो गया हो, ऐसी दवाई खा ली हो या ऐसा व्यसन हो तो आस्ते आस्ते उसको निकाला जाता है। एक साथ झटके से वो नहीं छूट सकता तो उसको आस्ते आस्ते निकालने की प्रक्रिया है, प्रयोग है। ऐसे मिथ्यात्व का, अज्ञान का और संयोग में अनुकूलता में सुख बुद्धि का जो जहर है वो बहुत चढ़ गया है, उसको निकालना चाहिए, तो निकालना पड़ेगा। एक साथ अपनी बंद करने तो पड़ जाए
इस बात को नहीं, एक साथ ही कर जय मान लिया क्या
उसमें क्या है कि गलत है अभ्यास और एक प्रकार की निरंतर प्रयोग जो है ये मंगल ब्राह्मण वाला सिद्धांत ग्रहण किया, लोकन किया, प्रयोग किया, इसके माध्यम से पहले एक गलत क्योंकि उत्सव होता है। तो उत्सम उत्सम कब होगा? बलवान हो तो उत्सम हो नहीं सकता, दबेगा कौन? निर्भर होगा। तो पहले उसको यथार्थ प्रकार से निर्भर करना चाहिए, यथार्थ प्रकार से। यथार्थ प्रकार से बंद होगा तो तीव्र हो जाएगा, उत्सम ना से कभी बंद होता है लेकिन तीव्र हो जाता है। तो वो अफीम की तरह उसको निकाल सकता है।
तो इतने कि हमारा जितना थोड़ा सा ज्ञान का वर्तमान में उगाड़ है वही हमारा सर्वस्व है, उसी से मेरा पूरा काम होने वाला है। इसके अलावा और कोई दूसरे साधन में
कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं, ज्ञान ही साधन है, अकेला ज्ञान
थोड़ा सा
तो भी
स्वभाव लांच है,
स्वभाव लांच है।
आत्मा
को राग में सोचते हैं तो अंधेरे में ही रख सकते प्रकाश में है, ज्ञान प्रकाश में हमारा चैतन्य हीरा है, उसको खोजे तो अवश्य मिलने वाला है। परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ वाली वो है कि जिस प्रकार किसी पुरुष को अफीम का नशा चढ़ा है वो सुख प्राप्त करता है परंतु छूट नहीं सकता है, ऐसा हम जल्दी से छूट नहीं सकता है। किस लिए कि अफीम बहुत चढ़ी है, सुखने सुखने से सुख है, मानता है कि सुखने से सुख है,
बहुत नहीं चढ़ी
है,
बहुत चढ़ी होती
तो इधर
में सैनिक अंजलि जैनपुर में
आते हैं,
बहुत नहीं चढ़ी बहुत चढ़ी करके यही पर अटक
जाएंगे। क्या है सच्चा गुरु शास्त्र में सही बात आई फिर भी वो फिल्म की असर नहीं निकलती है तो बहुत चली है इसका आधार क्यों ले रहे हैं
हम नहीं लेते लेकिन आधार तो स्वयं हम यहाँ आए हैं जहाँ पर हैं सैनिक पंचम
लेकिन पुराने को तो हम पुराने को तो अंतर मारना पड़ेगा क्या कृपाल देव कहते हैं एक बहुत सारा बात लिखा है सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले सतपुरुष भी मिले और फिर भी जिस दो विचारों को नहीं छोड़ता है तो ऐसा समझना चाहिए कि महामूर्ति का बहुत प्रचुर बलवान पड़ा है।